नमस्कार भारत, 1 अगस्त दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फतल। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संचार निदेशक एंथनी स्कारामुची को बर्खास्त किया।
The president certainly felt that Anthony's comments were inappropriate for a person in that position.
बताएंगे क्यों हैं राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर, और जिक्र रहेगा समस्तीपुर में होने वाले सांप मेले का भी।
कोबरा के साथ साथ वो नॉन पॉइजनस स्नेक भी रहते हैं, लेकिन आज तक हम पिछले 4 वर्षों से हैं, ग्रेस ऑफ गॉड, आज तक इस तरह की चीजें नहीं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार विकास त्रिवेदी से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मीडिया चीफ एंथनी स्कारामुची अपनी नियुक्ति के 10 दिनों के भीतर ही बर्खास्त कर दिए गए। एंथनी पर एक रिपोर्टर से बात करते हुए अपने सहयोगियों के लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। एंथनी बीते 10 दिनों में व्हाइट हाउस के ऐसे चौथे अधिकारी हैं जिन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा ने कहा कि एंथनी जिस पद पर हैं वहाँ ऐसी भाषा का इस्तेमाल उन्हें शोभा नहीं देता। वेनेजुएला में नेशनल असेंबली में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की जीत हुई है। इस जीत को शर्मनाक बताते हुए अमेरिका ने मदुरो पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने कहा कि रविवार को नई असेंबली के लिए हुए अवैध मतदान ये साबित करते हैं कि वो तानाशाह हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीव न्यूचन ने कहा कि वेनेजुएला पर और भी प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रपति मदुरो को मिली इस जीत के बाद संविधान को फिर से लिखने के लिए ताकतें मिल जाएंगी। विपक्ष का इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। मदुरो ने जीत के बाद अपने पहले संबोधन में कहा, मैं तख्तापलट को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं किसी भी तरह की साजिश किए जाने के खिलाफ हूं, विपक्ष अपने रवैये से हिंसा भड़का रहा है। मदुरो की जीत पर काराकस में स्थानीय लोगों ने भी हैरानी जताई है। अपनी जीत, अपनी जिंदगी के बीते 46 साल में मैंने इससे बड़ी धोखाधड़ी नहीं देखी। पूर्व राष्ट्रपति उगो शावेज और मदुरो की पिछली जीत में भी इतने वोट नहीं मिले थे जितनी सरकार रविवार को मिलने के दावे कर रही है। मेरा जहां घर है वहां मतदान केंद्र में बिल्कुल लाइन नहीं लगी थी, मतदान केंद्र वीरान पड़े हुए थे। स्थानीय निवासी मार्बिलिस एलकाला के शब्द। कतर ने विश्व व्यापार संगठन से खाड़ी देशों के आर्थिक प्रतिबंध के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है। कतर पर यह प्रतिबंध इस साल जून महीने से लगा है। कतर के अर्थव्यवस्था और वाणिज्य मंत्री शेख अहमद अल थानी ने अरब देशों के व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून का उल्लंघन बताया। अरब देशों की सरकार ने शिकायत पर अब तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इससे पहले विश्व व्यापार संगठन को इन देशों ने कतर पर अपने प्रतिबंधों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पूरे 100 साल के इंतजार के बाद पेरिस 2024 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। लॉस एंजलिस में अधिकारियों ने कहा कि उनके इरादे 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करवाना है। ये दोनों शहर 2024 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी हासिल करने की होड़ में शामिल थे, लेकिन बाजी हाथ लगी पेरिस के।
So the Olympics is gonna be in LA. I think that's going to be a great thing.
लॉस एंजलिस में भी ओलंपिक होने वाला है, ये कमाल की बात है, मज़ा आएगा। मुझे लगता है कि इसे देखने वालों की संख्या में इजाफा होगा। मैं अब तक तो ओलंपिक खेलों का दीवाना नहीं था, लेकिन अब क्योंकि ये मेरे शहर में ही हो रहा है, मैं इसके साथ पक्का रमने वाला हूँ। लॉस एंजलिस में रहने वाले फ्रेंकी के शब्द। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है कि फिलीपींस में अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं के मामले में गंभीर वृद्धि हुई है। उनका कहना है कि यह हैरान कर देने वाली बात है कि बीते कुछ वक्त में स्थानीय जनता, बच्चों, व्यापार संघ के लोगों और ज़मीन पर अधिकार की बात करने वाले नेताओं पर हमले बढ़े हैं। देश का पश्चिमी राज्य गुजरात इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से गुजरात में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हज़ारों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। गुजरात के वो जिले बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, उनमें पाटन जिला और बनासकांठा शामिल है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी दौरा किया। पोलैंड के पर्यावरण मंत्री का कहना है कि प्राचीन बियालावेजा जंगल में कटाई का काम जारी रहेगा। इस जंगल में कटाई को बंद करने को लेकर यूरोपीय संघ कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसको पोलैंड ने मानने से इनकार कर दिया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही तैनात किए गए व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर को अचानक उनके पद से हटा दिया है। आज ही व्हाइट हाउस के नए चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली ने भी अपना पदभार संभाला है। जॉन केली इससे पहले होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी थे। करीब 6 माह की अवधि में ही ट्रंप व्हाइट हाउस के कई अधिकारी या तो निकाल दिए गए हैं या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
पिछले कुछ हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में उच्च पदों पर काम करने वाले कई अधिकारियों के बीच तकरार के साथ साथ उथल पुथल सी मची रही है और इस सिलसिले में ताजा तरीन मामले में सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस कम्युनिकेशंस डायरेक्टर एंथनी स्कारामुची को अचानक पद से हटा दिया। 10 दिन पहले अपनी नियुक्ति के फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्कारामुची ने राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति बार बार अपनी भावनाओं का इजहार कुछ यूं किया था। लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि नए चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली को अपने हिसाब से व्हाइट हाउस के स्टाफ नियुक्त करने के मकसद से स्कारामुची को हटाया गया है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता सैरा हकबी सैंडर्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्कारामुची द्वारा पिछले व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ राइन्स प्रीबस को बुरा भला कहने पर भी नाराजगी थी।
The president certainly felt that Anthony's comments were inappropriate for a person in that position.
पिछले हफ्ते एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए स्कारामुची ने राइन्स प्रीबस के बारे में अपशब्द कहे थे और राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पर स्कारामुची से नाराज थे। पिछले हफ्ते ही राइन्स प्रीबस को भी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ के पद से हटा दिया था। एंटनी स्कारामुची के व्हाइट हाउस में तैनाती के ऐलान के बाद ही पिछले व्हाइट हाउस प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने भी नाराजगी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब जॉन केली, जो अभी तक होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभाला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जॉन केली की होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम की तारीफ करते हुए उम्मीद जताई है कि ऐसा ही काम वो व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर भी करेंगे।
We just swore in General Kelly. He will do a spectacular job, I have no doubt, as chief of staff.
जॉन केली अमरीकी फौज के मरीन जनरल रह चुके हैं और अब ट्रंप प्रशासन को उम्मीद है कि केली व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ की हैसियत से व्हाइट हाउस के कामकाज में बेहतर अनुशासन लाने में मदद करेंगे। करीब 6 महीने पुराने ट्रंप प्रशासन में आधा दर्जन से ज्यादा उच्च अधिकारियों को विभिन्न कारणों से या तो हटाया जा चुका है या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसमें राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक फ्लिन, FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी जैसे अधिकारी भी शामिल हैं। याद रहे कि अटर्नी जनरल जेफ सेशंस को भी खुद राष्ट्रपति ट्रंप कई बार सख्त आलोचना का निशाना बना चुके हैं, लेकिन अभी सेशंस ने अपने पद पर ही बने रहने का इशारा दिया है। जानकारों का ख्याल है कि प्रशासन के अंदर गुटबाजी और राजनीति के कारण भी ट्रंप प्रशासन का कामकाज ठीक तरह से नहीं चल पा रहा है और ऐसे में जब स्कारामुची की तैनाती हुई तो अंदरूनी गुटबाजी और खींचतान खुलकर सामने आ गई थी। लेकिन अब व्हाइट हाउस का कहना है कि व्हाइट हाउस के सारे कर्मचारी नए व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ रिटायर्ड जनरल जॉन केली के अधीन काम करेंगे और केली पूरे अधिकार के साथ व्हाइट हाउस में कामकाज चलाएंगे। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
और अब कुछ खबरें भारत से। किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर राज्यभर की यात्रा पर निकले कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर के साथ जिला प्रशासन और पुलिस के संघर्ष का मामला उत्तर प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि अंबेडकर नगर जिले में धरने पर बैठने के बाद जिला प्रशासन ने किसानों के मुआवजे संबंधी राज बब्बर की सभी मांगें मान ली, लेकिन किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी लखनऊ आ रहे हैं। सुनिए समीर आजमत मिश्र की रिपोर्ट।
अम्बेडकर नगर जिले के डोडो गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे जमीन का समुचित मुआवजा मांग रहे किसानों के समर्थन में जब राज बब्बर पहुंचे तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया, लेकिन राज बब्बर पैदल ही गांव पहुंचे और पूरे 1.5 दिन धरने पर बैठे रहे।
अगर आपकी जबान को अगर कोई लिख के सामने लेके जाता है, अगर आज आपने कहा है कि 100 रुपए में 150 किलो आलू बिक रहा है, आपको 150 किलो आलू रात में ले जाते हैं और 100 रुपए में आपकी खेत के जाते हैं जिसमें आपकी पूरी भी कीमत नहीं निकलती 60 रुपए की तो पूरी होगी 150 रुपए।
आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि उनकी अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा अभी नहीं मिला है। यही नहीं, कई जगह मुआवजे के रेट भी अलग अलग दिए गए हैं। धरने में मौजूद कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू कहते हैं,
एक भिन्नता थी कि बगल के जनपद में आजमगढ़ में 12 लाख रुपए भिसवा जमीन लिया जा रहा था किसानों का, और वहीं अंबेडकर नगर जिले में बगल के एक गांव 3 किलोमीटर दूर पर 12 लाख का भिसवा, और उसी अंबेडकर नगर अगर जनपद शुरू हो रहा है तो वहां 80,000 रुपए भिसवा। तो ये इतना बड़ा अंतर का विरोध उन्होंने किया।
राजबब्बर किसानों के लिए हक मांगो अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। रविवार को वो अम्बेडकर नगर में थे जहां मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे किसानों से उनका सामना हुआ। कांग्रेस के इस कार्यक्रम पर प्रशासन ने रोक लगा रखी थी, लेकिन राजबब्बर अपने साथियों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। रात भर गाँव में ही गुजारने के बाद सोमवार को देर शाम प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बराबर मुआवजा दिलाने का आश्वासन देते हुए उनका धरना खत्म कराया। अजय कुमार लल्लू बताते हैं।
प्रशासन कुचलना चाहता था, उनको मारने पीटने की कार्रवाई तक किया था। वहाँ के लोगों ने प्रतिकार किया तो उन लोगों को जेल में भी बंद किया। हम सब लोग वहाँ धरने पर डटे रहे, और धरने पर डटने के बाद में सरकार झुकी, प्रशासन झुका, और अब जाके उन्होंने फैसला किया कि हम जो 12 लाख रुपया भिसवा अगर आजमगढ़ में है तो हम अम्बेडकर नगर में भी देंगे, और 2017 अगर जमीन हम ले रहे हैं तो आज के रेट पर देंगे।
इस बीच खबर ये भी है कि किसानों के लिए चल रहे पार्टी के इस अभियान में शामिल होने के लिए आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी लखनऊ आ रहे हैं। वहीं राजबब्बर की प्रशासन के साथ हुई झड़प का मामला कांग्रेस सदस्यों ने राज्यसभा में भी उठाया। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
उधर BJP अध्यक्ष अमित शाह भी 3 दिनों से लखनऊ में थे। इस दौरान उन्होंने एक यादव कार्यकर्ता के घर खाना खाकर यादवों को संकेत देने की कोशिश की, तो वहीं कल उनके दौरे के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के 2 और बहुजन समाज पार्टी के 1 MLC BJP में शामिल हो गए। इन तीनों नेताओं की खाली हुई सीट पर BJP सरकार के कुछ मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। दौरे के आखिरी दिन अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी 2019 में मौजूदा बहुमत से भी बड़े बहुमत के साथ आएगी।
19 में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से इससे भी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसमें मुझे लगता है न केवल मुझे, देश की जनता को भी अब संशय नहीं है, और उसका आधार केवल और केवल विकास और सुशासन है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 साल के लिए काम किया है, और हमारी राज्य सरकारें 13 राज्य सरकारें जिस प्रकार से अच्छा काम करी है, मुझे लगता है देश की जनता हमें फिर से एक बार ज्यादा प्रबलता से सेवा करने का मौका दे।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह। उत्तर प्रदेश में BJP अध्यक्ष अमित शाह के इस दौरे में सपा और बसपा नेताओं के BJP में शामिल होने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह की हलचल के संकेत मिल रहे हैं, इस पर BBC संवाददाता हरिता कांडपाल ने वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव से बात की।
पता नहीं क्यों BJP इस समय फुल फ्लेज मेजोरिटी में है UP में। अभी अभी विधानसभा के चुनाव में उनको बहुत स्वीपिंग विक्ट्री मिली है, लेकिन फिर भी उसका कॉन्फिडेंस गड़बड़ाया हुआ है। अमित शाह जो BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बहुत डेस्परेट हैं, बहुत बहुत बेचैन तरीके से वो सारी जातियों को, सारे फैक्टर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे देखेंगे कि उन्होंने अभी अति पिछड़ों को साधने की कोशिश की, फिर उसके बाद ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की दिनेश शर्मा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके, फिर उसके बाद उससे पहले अनुप्रिया पटेल को किसके टिकट दे करके और सेंटर में मिनिस्टर बना करके कुर्मियों को उन्होंने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। अब वो कार्यकर्ता के घर खाना खा के यादवों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों को साधने की कोशिश तो पक्के तौर पे नहीं की जा रही है, क्योंकि BJP ने एक तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी टिकट न मुस्लिम को दे करके बल्कि जाहिर कर दिया है कि मुसलमान हमारे लिए अछूत है, हमको उनका वोट नहीं चाहिए। तो ये सबको साधने की कोशिश हो रही है, और ये बहुत डेस्परेट अटेम्प्ट है। मतलब इसके पीछे मैं कोई रणनीति नहीं देखता हूँ, बल्कि मैं इसको इसी तरह से देखता हूँ कि जैसे कोई एक झोला छाप डॉक्टर है और वो तमाम तरह की दवाएं किसी डिजीज को ठीक करने के लिए देता है, जो काम कर जाए उसको मान लेता है कि ठीक हो गई। तो मैं इसको इसी तरह की कोशिश के रूप में देख रहा हूँ।
और यादव क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? अमित शाह जैसे कि यादव कार्यकर्ता के घर खाना खाने गए, क्या उसे संदेश देना चाह रहे हैं वो?
देखिए, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसको इसलिए ऑथेंटिक न माना जाए कि मैं यादव हूँ। मैं इसे इसलिए इस तरह से देखा जाना चाहिए कि UP के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लंबे समय से देख रहे एक जर्नलिस्ट और के नाते और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते इसको लिया जाए। तो BJP हमेशा से यादवों को अपने फोल्ड में लेने की कोशिश करती रही है, और पहले यादव उसके फोल्ड में कुछ हद तक रहा भी है, जैसे कई बीच में ऐसे दंगे हुए हैं जिसमें यादव फोर फ्रंट पे दिखाई देते हैं, जैसे 91 का जो बनारस दंगा है, और वो बीजेपी की तरफ से मुसलमानों से लड़ते हुए खून खराबा करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स है उसके बाद यादव कभी बीजेपी के फोल्ड में नहीं आए, और यादवों की जो संख्या है 12% के आसपास, और दूसरा उनका एक ऐसा ग्रुप होना जो पॉलिटिक्स में अगर वो इनके साथ आते हैं तो ये क्लेम करेंगे कि जो इनकी चीफ अपोनेंट पार्टी थी समाजवादी पार्टी उसको इन्होंने राउट कर दिया है, और ये जो इससे जो एक माहौल बनेगा, इससे जो कॉन्फिडेंस आएगा, उससे जो छोटे छोटे कास्ट ब्लास्ट हैं दूसरे वो भी बीजेपी की तरफ आ सकते हैं।
जो भोजन की राजनीति हो रही है, इससे पहले भी वो अति पिछड़ा और दलितों के घर जाके उन्होंने खाना खाया था, अब यादव कार्यकर्ता के घर, इस पर कुछ रोशनी डालिए।
इस तरह की बहुत सस्ती और नॉन सीरियस किस्म की पॉलिटिक्स है जो सारी पार्टियां करती रही हैं, अकेले बीजेपी ही नहीं करती है। कुछ अर्सा पहले देखेंगे कि आप पाएंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भी दलितों के घर जा करके उनके साथ खाना खाने का एक कैंपेन चलाया था, लेकिन कांग्रेसियों ने ही उसको मजाक में बदल दिया। वो गाँव में AC, जनरेटर, हलवाई सब लेके पहुंचने लगे और वो एक तरह से अपनी अमीरी और इलीट कल्चर के दिखावे में बदल गया और दलितों ने इसका काफी मजाक भी बनाया। फिर उससे पहले आप देखेंगे कि मायावती जब पावर में थी तो उन्होंने भी एक बाकायदा यादव रैली की थी और यादव भाईचारा समिति बनाई थी, यादव उनके चक्कर में नहीं आए। और बीजेपी भी हर साल एक समरसता भोज करती है दलितों के साथ, कायदे से होना तो ये चाहिए था कि इन सारे भोजों का इस्तेमाल जातीय जो जातिवाद है, जो जातीय हेट्रेड है, उसको खत्म करने में इस्तेमाल किया जाता, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह के भोजों का जो सोशल हार्मनी का कारण हो सकते थे, सोशल हार्मनी को प्रमोट कर सकते थे, उनका इस्तेमाल अब खुद जातिवाद को फैन करने के लिए और जातियों को पटाने में किया जा रहा है, लेकिन हमेशा इसका असर हो कोई जरूरी नहीं है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव। ये BBC है, आप नमस्कार भारत सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। आइए देखते हैं आज के अखबारों का ध्यान किन किन खबरों पर गया है। विकास त्रिवेदी बताइए
जी। अमर उजाला ने पहले पन्ने पर उत्तराखंड के चमोली जिले में चीनी सैनिकों की खबर को छापा है। ज़्यादातर अखबारों ने आज इसी खबर को अपनी मतलब पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला शीर्षक लगाता है कि उत्तराखंड में घुसे 200 सैनिक। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है, पर अब इसको ये देखिए कि हिंदुस्तान टाइम्स जो कि इंग्लिश का अखबार है वो लिखता है चीनी सैनिक घुसे, और हिंदुस्तान टाइम्स का जो हिंदी है हिंदुस्तान वो लिखता है कि खदेड़ा। तो मतलब दोनों में एक तरफ कह रहा है कि घुसे और दूसरा अखबार कह रहा है कि खदेड़ा, तो ये दो चीज़ें हैं। जनसत्ता ने भी इसको अपनी पहली खबर बनाया है। आज के अखबारों में नीतीश कुमार के मोदी से मुकाबले में की ताकत किसी में नहीं है जो बयान था उनका कल का, उसको सबने छापा है। जो लोग 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न नहीं भर पाए थे उनके लिए राहत यह है कि अब ये तारीख 5 अगस्त कर दी गई है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स भी जेब पर असर डालने वाली खबर को पहले पन्ने पर छापता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बचत खातों पर ब्याज दर में 0.5% की कटौती की है, लेकिन ये कटौती उन लोगों के लिए है जिनके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपये तक होंगे उनके लिए है, उससे ऊपर जो होगा उनको 4% मिलता रहेगा। इंडियन एक्सप्रेस अपनी पहली खबर में लिखता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक दूसरे के संपर्क में हैं। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के हवाले से अखबार इस बात को लिखता है कि बातचीत के लिए कुछ हफ्तों में अजीत डोभाल और नासिर खान की मुलाकात बातचीत बढ़ी है, और वो ये कहता है कि दोनों की मुलाकात भी संभव है।
बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका। देश के पश्चिमी राज्य आजकल बाढ़ की चपेट में है। सौराष्ट्र के कई ज़िले भारी बारिश से करीब 10 दिन पहले ही बेहाल थे, और इन दिनों उत्तर गुजरात का पाटन ज़िला और बनासकांठा बाढ़ के कहर की चपेट में है। इस बीच बाढ़ को लेकर राजनीति भी जारी है। अगले हफ्ते होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी छोड़कर राजनीति को गर्मा दिया है। बाकी 44 विधायकों को लेकर कांग्रेस ने बेंगलुरु के एक रिसॉर्ट में डेरा डाला है, तो बीजेपी ने इसी पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। बाढ़ और दल बदलुओं की राजनीति में फंसे गुजरात के हालात पर हरिता कांडपाल की रिपोर्ट।
कांग्रेस में बाढ़ का पानी और राजनीति दोनों उफान पर हैं। जहां राज्य में कई जिलों में लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नेताओं से परेशान है। 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने विधायकों को बेंगलुरु के एक रिसोर्ट में रखा है। कल संसद के दोनों सदनों में गुजरात कांग्रेस विधायकों को लेकर हंगामा हुआ है। बाढ़ की बात करें तो सौराष्ट्र के बाद मध्य गुजरात और अब उत्तर गुजरात की बारी है। इन दिनों पाटन और बनासकांठा में बाढ़ का कहर बरपा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अलावा सेना को भी राहत के काम में लगाया गया है। इस बीच कल केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी बनासकांठा के दौरे पर पहुंची। उन्होंने वहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस एक राज्यसभा सीट को बचाने के लिए बाढ़ पीड़ितों को भूल गई है और अपने विधायकों को बेंगलुरु के रिसोर्ट में छुपाने में लगी हुई है। स्मृति ईरानी ने कहा,
यह भी कहना उचित होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी रास्ता के दूसरे दिन से ही जनता के मध्य में पूरे प्रशासन के साथ अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। वर्तमान में भी वो इसी इलाके में कैंप कर रहे हैं ताकि रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम तेजी से हो सके।
वैसे स्मृति ईरानी खुद भी बीजेपी से गुजरात से राज्यसभा की उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने राज्यसभा में कल बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गुजरात कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के विधायकों को 8 अगस्त को क्रॉस वोटिंग के लिए रिश्वत की पेशकश की जा रही है। 8 अगस्त को राज्यसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीति गरमाई हुई है और कांग्रेस के 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद पटेल की राह मुश्किल बन सकती है।
हरिता कांडपाल की रिपोर्ट। जिस नाग और सांप को देखकर हमारी जान सूख जाती है, अगर उसका मेला लगा हो तो आप क्या कहेंगे? बिहार के समस्तीपुर में एक ऐसा ही मेला लगता है जिसमें सांप और नाग को हाथ में पकड़कर लोग हजारों की तादाद में नदी किनारे जाते हैं। क्या है ये मेला और स्थानीय लोगों के लिए इसका महत्व क्या है? समस्तीपुर के विभूतिपुर की नरहन पंचायत से भेजी इस रिपोर्ट में सीतू तिवारी ने यही बताने की कोशिश की है।
हम लोग को नाग मेला अच्छा लगता है, जो सब सांप रख के उठाते हैं और गला में डालते हैं, वो हमको अच्छा लगता है।
तो तुमने कभी सांप डाला है अपने गले में?
हाँ।
कैसा लगता है सांप छूने में?
मुलायम लगता है।
ये आवाज़ है 9 साल के अंकित की। अंकित ही नहीं बल्कि बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड में रहने वाले ज़्यादातर बच्चों की यही कहानी है। सांप और नाग का नाम सुनकर ही उनकी आंखें चमक उठती हैं और ढेरों किस्से जुबां पर आने के लिए उतावले हो उठते हैं। न माथे पर कोई शिकन, न डर, बस थोड़ा शर्माते हैं और बताते हैं कि इस बार मेले में उन्होंने सांप को पकड़ के फोटो खिंचाई थी।
अच्छा लगता है उसमें जो सांप सबको रखा जाता है, उसके लिए उसमें पूजा करना पड़ता है, उसी लिए रखा जाता है।
दरअसल समस्तीपुर में हर साल नागपंचमी के मौके पर सांपों का मेला लगता है। खास तौर पर जिले के विभूतिपुर प्रखंड के सिंघिया, नरहन, डुमरिया, खदियाही, बेसरी, चक हबीब, मुस्तफापुर सहित पूरे इलाके में ये मेला छोटे या बड़े स्तर पर लगता है। जहां कहीं भी भगवती स्थान है वहां लोग सांप मेला का आयोजन करते हैं। 60 साल के महेंद्र पासवान बीते 45 साल से बेला नरहन पंचायत स्थित भगवती स्थान का काम संभाल रहे हैं। स्थानीय लोग इन्हें भगत या नागों के पुजारी कहते हैं। महेंद्र भगत बताते हैं,
भगवती के सेवक हैं और जागरण दिन सांप कुछ निकालते हैं, जागरण कर कर और नदी चलते हैं। नदी जाकर जैसे जैसे सब आदमी के लेकर जाते हैं, नदी से निकल कर सांप लेकर लौटते हैं, लौट कर और जाकर जैसे फिर जंगल में छोड़ देते हैं।
मेला लगने से एक महीने पहले ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। स्थानीय लोग सांप को पकड़कर घरों में रखना शुरू कर देते हैं। नागपंचमी के दिन ये लोग विषैले सांप और नाग हाथ में उठाकर ढोल नगाड़ों के शोर के बीच जुलूस निकालते हैं। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी के हाथ में सांप खिलौने जैसा लगता है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि आज तक सांप और नाग के इस जुलूस में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लोगों से आपसी बातचीत में पता चलता है कि सांप और नाग का विष भगत लोग निकाल देते हैं।
विष निकाल दिया जाता है, ऑपरेशन नहीं किया जाता। युग परिवर्तन के कारण बहुत सा ऐसा मशीन है जो उससे पकड़ा जाता है, उसे हम लोग मतलब चलते हुए भी पकड़ लेते हैं।
माता का मनोकामना पूरा होने के बाद तो पब्लिक को फर्ज बनता है कि माता का भी चढ़ावा पूरा करे। बहुत भीड़ रहता है,
जीव जंतु कोई भी हम लोग के साथ है वो हम लोग जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, इनको क्षति नहीं पहुँचाए।
अब फायदा है तब न करते हैं, देखिए वह सांपे देखे बहुत बहुत दूर का आवे छे आदमी को सबसे कॉलेज रोड दम किसम पीस बदले दे।
वही अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार भी बताते हैं कि बीते 4 साल की उनकी पोस्टिंग के दौरान मेले के वक्त किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है।
प्रशासन यही है कि भीड़ इकट्ठा रहती है, एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों का वो रोल होता है। एक दो जगह रेलवे ट्रैक है तो हम लोग रेलवे को भी चिट्ठी लिखते हैं। सही बात है कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोबरा के साथ साथ वो नॉन पॉइजनस स्नेक्स भी रहते हैं, लेकिन आज तक हम पिछले 4 वर्षों से हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज तक इस तरह की चीजें नहीं।
दिलचस्प है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी, चंदे और जातीय भेदभाव से परे आयोजित होने वाला यह मेला कितना पुराना है इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सिंघिया घाट की 90 वर्षीय महतारी देवी कहती हैं कि मेला 100 साल से लग रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मेला 300 साल पुराना है। महतारी देवी कहती है
100 वर्ष से बेसी से मेला लगे है, ये लाल भगत रहे, बचोर भगत है, इन्हें एगो सुरेश भगत है, जते सांप खोजबे तते सांप मिलत।
वही स्थानीय पत्रकार चंदन राय मेले को ऐतिहासिक बताते हैं। वो कहते हैं कि 1600 ईस्वी में राजा राय गंगाराम ने इस मेले की शुरुआत की थी। नाग मेला बड़ों के लिए धार्मिक मान्यता है, युवाओं और बच्चों के लिए रोमांच है, लेकिन 7वीं में पढ़ने वाली अंशु को ये मेला अच्छा नहीं लगता।
नागों को पकड़ना अच्छा बात नहीं होता है, वो अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें, जहरीली गैसें बहुत छूटने लगती है।
समस्तीपुर में लगने वाले इन मेलों के इतिहास के बारे में बहुत कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन मेले में युवाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना ये बात साफ तौर पर जाहिर करता है कि मेले के धार्मिक महत्व के साथ साथ इससे जुड़ा रोमांच भी युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र है। समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड से सीतू तिवारी, BBC।
और अब नजर दौड़ाते हैं खेल समाचारों पर।
BBC खेल समाचार के साथ मैं हूं वैभव दीवान। लंदन के कैनिंगटन ओवल में चल रहे इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 239 रनों से जीत हासिल कर ली है। इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका को जीतने के लिए 492 रनों का विशाल टारगेट दिया गया था, जिसका पीछा करती दक्षिण अफ्रीका की टीम 252 रनों पर ही सिमट गई। इस मुकाबले में टॉस जीतते हुए मेजबान इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की। पहली पारी में इंग्लैंड ने 353 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका 175 रन ही बना पाई। इस वजह से पहली पारी में इंग्लैंड को 178 रनों की अच्छी खासी बढ़त मिली। इस स्कोर में इंग्लैंड ने 313 रन जोड़े दूसरी पारी में, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका को जीतने के लिए 492 रनों का टारगेट मिला। इस बड़े स्कोर के सामने दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले से ही कमजोर लग रही थी। चौथे दिन के अंत तक दक्षिण अफ्रीका 4 विकेट खो चुका था, जिससे इंग्लैंड के इरादे बुलंद लगने लगे। पांचवें दिन में इंग्लैंड ने लंच से पहले 3 विकेट ली और लंच के बाद ऑलराउंडर मोइन अली ने 3 लगातार विकेट हैट्रिक लेते हुए इस मैच को खत्म किया। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर की सेंचुरी टीम को जिताने में नाकामयाब रही और ये मैच इंग्लैंड 239 रनों से जीत गया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने कमाल खेला और वो इस मैच में मैन ऑफ मैच भी बने। पहली पारी में 112 रन और दूसरी पारी में 31 रन, जबकि दोनों ही इनिंग्स में विकेट लिए बेन स्टोक्स ने। इसी के साथ तीसरा टेस्ट मैच इस श्रृंखला का इंग्लैंड के नाम रहा और अब 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-1 से है आगे। आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा 4 अगस्त से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में। अब बात बैडमिंटन की, जहां US ओपन चैंपियन HS प्रणॉय शुरू हो रहे न्यूजीलैंड ग्रांड प्री गोल्ड बैडमिंटन में पुरुष एकल वर्ग में अपने इस फॉर्म को बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगे। US ओपन जीतने के बाद विश्व रैंकिंग में वो 17वें स्थान पर पहुंच गए थे। न्यूजीलैंड ग्रांड प्री में उनका पहला मुकाबला होगा इंडोनेशिया के शेसार हिरेन से। दूसरी तरफ US ओपन फाइनल में पहुंचे पुरुष खिलाड़ी पी कश्यप भी इस टूर्नामेंट में नजर आएंगे।
सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मीडिया चीफ एंथनी स्कारामूची अपनी नियुक्ति के 10 दिनों के भीतर ही बर्खास्त कर दिए गए। उन पर रिपोर्टर से बात करते हुए अपने सहयोगियों के लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप था। वेनेजुएला में नेशनल असेंबली में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की जीत हुई है। जीत को शर्मनाक बताते हुए अमरीका ने मदुरो पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। कतर ने विश्व व्यापार संगठन से खाड़ी देशों के आर्थिक प्रतिबंध के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है। कतर पर यह प्रतिबंध इस साल जून महीने में लगा था। पूरे 100 साल के इंतजार के बाद पेरिस 2024 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। देश का पश्चिमी राज्य गुजरात इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से गुजरात में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।